नया अध्याय धर्म सुधार। धर्म सुधार एक बहुत ही व्यापक और पेचीदा घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम निकले, इसलिए इस संक्षिप्त लेख में इसके कुछ चुने हुए विषयों की ही चर्चा की गई है। इससे संबंधित अधिक परिचित पक्षों को यहाँ छोड़ दिया गया है, जैसे आंग्ल धर्म सुधार, अलग अलग देशों में धार्मिक परिवर्तन से संबंधित विस्तृत काल क्रमिक सर्वेक्षण और उनसे जुड़ी हुई राजनीतिक घटनाएं आदि। प्रस्तुत लेख में धर्म सुधार के मूल में निहित भावना, इसके सामाजिक आधार और अंततः इसके उन दूरगामी परिणामों पर अधिक जोर दिया जाएगा जिन्होंने आगामी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास को प्रभावित किया। हालांकि इनमें से अधिकतर परिणामों को धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ करते समय दृष्टि में नहीं रखा गया था, प्रस्तुत लेख का उद्देश्य निम्नलिखित विषयों की रूपरेखा भर प्रस्तुत करना है, उनका विस्तृत विवेचन करना नहीं। धर्म सुधार का अर्थ। धर्म सुधार शब्द का अर्थ विशेष बुराइयों में सुधार करना है। प्रोटेस्टेंटों ने इसी तरह की अनेक तथाकथित बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, जैसे सांसारिकता, भ्रष्टाचार और पोप की अध्यक्षता वाले रोमन कैथोलिक पादरियों द्वारा जबरदस्ती धन की लूट, जिसका एक दृष्टांत पापों से मुक्ति के लिए माफीनामों का विक्रय है जिसकी 1517 में लूथर ने भर्त्सना की, और पारंपरिक रूप में इसी घटना से धर्म सुधार का शुभारंभ माना जाता है, और साथ ही धर्म के लोकप्रिय रूप में विभिन्न स्तरों पर अंधविश्वास एवं कुप्रथाएं। परंतु इस परिभाषा को संतोषजनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की बुराइयां और उन बुराइयों को सुधारने की कोशिश केवल 16वीं शताब्दी की ही विशेषता नहीं है। कैथोलिकों ने स्वयं 16वीं शताब्दी के अंत में अपने प्रति सुधार आंदोलन के द्वारा कैथोलिक संप्रदाय से अलग हुए बिना ही अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। वस्तुतः प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार का वास्तविक महत्व इस बात में निहित है कि मूलतः यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसने व्यवस्थित रूप में मध्यकालीन चर्च के मूल ढांचे और उसके दावों को अस्वीकार किया, मध्यकालीन पश्चिमी यूरोप की मसीही एकता को खंडित कर डाला, पादरी वर्ग की स्थिति को और फिर अंततः सारे संगठित धर्म की स्थिति को कमजोर कर दिया। मध्यकालीन कैथोलिक चर्च की मूल विशेषताएं। कैथोलिक चर्च ने अनिवार्य सदस्यता को लागू किया और इसे सार्वभौमिक ईसाई समाज की संज्ञा दी। यह चर्च और राज्य दोनों का समन्वय था, जिस पर सैद्धांतिक रूप से पोप और पवित्र रोमन साम्राज्य की दो तलवारों का शासन था। धार्मिक विश्वासों की विविधता में धार्मिक सहिष्णुता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। ख, इस समुदाय के भीतर पादरियों, जिनके अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्यक्ष पोप था, कि मध्यस्थ पुरोहितों के रूप में एक खास स्थिति थी। यह माना जाता था कि एक अच्छे ईसाई का जीवन जीने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन पादरियों की मध्यस्थता परम आवश्यक है। इस प्रकार मोक्ष या पाप मुक्ति, जस्टिफिकेशन, सत्कर्मों अर्थात ऐसे बाह्य कर्म जिन्हें पादरियों ने पूर्ण कर्म घोषित कर दिया है, पर निर्भर करता था। उक्त मोक्ष उन सात धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन पर भी निर्भर था, जिनकी अध्यक्षता केवल पादरी ही कर सकते थे। इन अनुष्ठानों में सैक्रामेंट ऑफ मास का विशेष स्थान था, जिसमें ईसा के अंतिम भोज का पुनर्यायोजन होता था। इस भोज में मुख्य पादरी तत्व परिवर्तन का चमत्कार दिखलाता था, जिसमें रोटी एवं मदिरा को ईसा के पार्थिव शरीर एवं रक्त में बदल दिया जाता था। धर्म का आधार बाइबल थी। बाइबल मूलतः लैटिन भाषा में थी, जिसे आम आदमी बहुत कम जानते थे, इसलिए पादरी वर्ग चर्च की कई शताब्दियों में निर्मित परंपरा के माध्यम से बाइबल की सही व्याख्या के एकाधिकार का दावा करते। विशिष्ट कैथोलिक संस्थाएं और प्रथाएं जैसे संन्यास, पादरियों द्वारा ब्रह्मचर्य जीवन यापन, एक अटूट बंधन के रूप में विवाह संस्कार, पादरियों के सम्मुख पापों की आत्म स्वीकृति, संतों और विशेषतः मरियम की पूजा, तीर्थयात्रा, चर्च के प्रभावशाली धर्मोत्सव आदि, ये सभी संयुक्त रूप से पादरियों की श्रेष्ठ स्थिति में अभिवृद्धि करने और सामान्य या साधारण ईसाई जनों पर उनके नियंत्रण को बढ़ाने में योग देते थे। ग, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन या राजनीतिक दलों के अभाव में ये धर्माचार ही मध्यकालीन समाज में जनमत निर्माण के एकमात्र साधन थे, और इन्हीं के माध्यम से शासक वर्ग अपना आधिपत्य कायम करता था। चर्च अर्थात पादरियों के पास बड़ी बड़ी जमीनें या भारी भूसंपत्ति थी जिस पर वे कृषक दासों द्वारा खेती कराते थे और कर जिन्हें धार्मिक कर कहते थे लगाते थे। उनकी चर्च न्यायालय की एक विशेष व्यवस्था थी जिस पर रोम का शीर्षस्थ नियंत्रण रहता था। अतः चर्च के विरुद्ध आक्षेप या प्रहार का अर्थ था स्वयं राज्य के और कभी कभी तो समस्त सामाजिक आर्थिक ढांचे के विरुद्ध आक्षेप या प्रहार। नास्तिकता को राजद्रोह के समतुल्य समझा जाता था और वैकल्पिक धार्मिक सिद्धांतों और संगठनों के प्रतिपादन के बड़े गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते थे। पृष्ठभूमि, इससे पूर्व भी धर्म सुधार के प्रयास हो चुके थे, जैसे 15वीं सदी के आरंभ का कॉन्सिलियर आंदोलन जिसके द्वारा पाक्षिक परिषदों के माध्यम से पोप की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया, और 16वीं शताब्दी का ईसाई मानवतावाद कालेट मोर और एरस्मस। इनमें मानवतावादी आंदोलन बुद्धिजीवियों के पुनर्जागरण की ही एक शाखा थी जिसमें विभिन्न बुराइयों की आलोचना की गई आदि ईसाई धर्म की ओर वापस जाने की सिफारिश की गई और बाइबल की लोक भाषाओं में अनुवाद की मांग की गई। इस प्रकार धर्म सुधार की कुछ मूल विशेषताओं को धर्म सुधारक आंदोलन से पूर्व ही प्रस्तुत किया गया, परंतु वहां परंपरा से विच्छेद का कोई क्रांतिकारी कदम न उठाकर आंतरिक सुधार की ही मांग की गई। इसके अतिरिक्त धर्मद्रोह की एक परंपरा भी पहले से प्रचलित थी जो चर्च के मूल दावों को स्वीकार नहीं करती थी। 14वीं सदी के आरंभिक तथा 15वीं सदी के अंतिम वर्षों में वैकलिफ तथा जान हुस जैसे लोगों ने जो आंदोलन चलाए उनमें से अधिकांश को प्लेबियन तत्वों किसानों और विशेषतः दस्तकारों का समर्थन प्राप्त हुआ। सामाजिक दृष्टि से इस आंदोलन के क्रांतिकारी परिणाम निकले क्योंकि यह सामंत विरोधी होने के साथ साथ पादरी विरोधी भी था। तीसरे, इनके अलावा अनेक अर्थ रहस्यवादी प्रवृत्तियां भी प्रचलित थीं जिनमें आंतरिक आस्था एवं निष्ठा पर बल दिया गया था, उन वाह कर्मकांडों पर नहीं जिन्हें आधिकारिक चर्च जैसे आधुनिक उपासक तथा नीदरलैंड एवं दक्षिण पश्चिम जर्मनी में सामान्य जीवन के बंधु जैसी संस्थाएं अधिक महत्व देता था। हाल ही के कुछ शोधों के आधार पर इन संस्थाओं को परवर्ती धर्म सुधारवाद से संबंधित बताया गया है। ख, अपने आविर्भाव के समय धर्म सुधारवाद अनेक गैर धार्मिक प्रवृत्तियों से भी बड़ी नज़दीकी से जुड़ा हुआ था, जैसे नरेशों द्वारा प्रादेशिक प्रभुसत्ता पादरी वर्ग पर शाही सत्ता के स्थापना और पोप के पद के राष्ट्रोपरि होने वाले दावों की अस्वीकृति के लिए प्रयास अथवा पोप के अधिकारों के संबंध में आदि राष्ट्रीयता वाली विरोध जो मूलतः इतालवी था अथवा सामंतों एवं ऐसे ही दूसरे लोगों द्वारा चर्च की भूमि के प्रति लोलुपता अथवा शहरी मध्य वर्ग का पादरी वर्ग के खिलाफ विरोध और धर्म के ऐसे रूपों की तलाश जो बुर्जुआ जीवन एवं मूल्यों के लिए अधिक प्रासंगिक हो अथवा सामंत पादरी वर्ग के खिलाफ दस्तकार कृषक वर्ग का विरोध। गो, इस प्रकार के अंतर्विरोध कुछ कारणों से सबसे पहले जर्मनी में प्रकट हुए। पवित्र रोमन सम्राट की शक्तिहीनता के कारण प्रोटेस्टेंट विद्रोह का शीघ्रता से दमन नहीं हो सका क्योंकि अनेक महत्वाकांक्षी नरेश एवं सामंत अपनी अपनी सत्ता के विस्तार एवं चर्च की भूमि पर कब्जा करने के लिए उत्सुक थे। नगरों में बुर्जुआ वर्ग का पर्याप्त विकास ही हो चुका था और अनेक नगर स्वायत्तता का उपभोग कर रहे थे। पोप पद एवं साम्राज्य के मध्य पुराने संघर्षों की तरह पोप एवं इतालवीय प्रभुत्व के विरुद्ध विरोध की एक सुदीर्घ परंपरा अभी भी जीवित थी। प्रोटेस्टेंटवाद की मूल विशेषताएं। क, सभी तरह के प्रोटेस्टेंटवादी आंदोलनों की मूल विशेषता थी विशिष्ट पादरीवाद या मध्यकालीन पादरीवाद की विचारधारा पर प्रहार। इसके अनुसार मोक्ष या पाप मुक्ति जस्टिफिकेशन बाह्य सत्कर्मों के बजाय आंतरिक निजी विश्वास पर निर्भर था और यह विश्वास ईश्वर की मुक्ति कृपा से ही संभव था। इससे समस्त ईसाई अनुयायियों की सार्वभौमिक पादरीवाद की विचारधारा का उदय हुआ। जैसा कि लूथर ने बड़े साफ शब्दों में बताया कि कोई मोची भी किसी पादरी की तरह ही अच्छा या बुरा हो सकता है, इसी पृष्ठभूमि में संस्कारों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया। इससे संस्कारों का महत्व भी कुछ कम हुआ और पादरी वर्ग द्वारा तत्व परिवर्तन द्वारा चमत्कार दिखाने के अवसर भी छीन लिए गए। यद्यपि इस मूलभूत ईसाई कर्मकांड के वास्तविक अर्थ के संबंध में प्रोटेस्टेंट ने आपस में विवाद किया और इसी वजह से लूथर, काल्विन एवं ज्विगली के अनुयायियों में दरार पड़ गई और वे विभाजित हो गए। प्रोटेस्टेंटवाद की एक अन्य मूलभूत विशेषता थी पादरी वर्ग द्वारा की गई बाइबिल की व्याख्या के स्थान पर स्वयं बाइबिल को मान्यता देने का आग्रह। प्रोटेस्टेंटों ने सर्वत्र विभिन्न जनभाषाओं में बाइबिल का अनुवाद कराने का प्रयास किया, जिससे सामान्य लोगों को उपलब्ध हो सके। पोप के प्रभुत्व की अस्वीकृति, जो ऊपर ऊपर से देखने पर प्रोटेस्टेंटवाद की सर्वाधिक स्पष्ट विशेषता दिखाई देती है, वस्तुतः जनता द्वारा मध्यवर्ती पादरियों, जिनकी अध्यक्षता पोप के हाथों में थी, के अधिकारों की अस्वीकृति थी। विशिष्ट धार्मिक संस्थाओं तथा रीति रिवाजों में जो परिवर्तन आए, उनके पीछे ये मूल सिद्धांत थे। ईसाई मठों की समाप्ति, पादरियों को विवाह की अनुमति, तलाक का संभव हो जाना, क्योंकि विवाह अब एक धार्मिक संस्कार नहीं रह गया था। पादरियों के सम्मुख अपने पापों की स्वीकृति की परंपरा का तिरस्कार, संतों एवं तीर्थयात्रियों को तिलांजलि, धर्म के उत्साहवातक रूप के स्थान पर उपदेशात्मक रूप पर बल आदि सर्वोत्र बल इस बात पर था कि पादरी वर्ग की विशेष शक्तियों का, उनकी पवित्रता का खंडन किया जाए और ईसा मसीह एवं सामान्य ईसाई जनों के बीच माध्यम के रूप में सभी का निषेध किया जाए। ख, यद्यपि लूथर एवं काल्विन ने स्वयं अपने अपने रूढ़िवादी संप्रदाय स्थापित करने का प्रयास किया और कई बार उन्होंने वैसी ही असहिष्णुता का परिचय दिया जैसा कि कैथोलिकों ने किया था, फिर भी प्रोटेस्टेंटवाद ने विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति और बाइबिल की निजी व्याख्या का अधिकार देकर निष्पक्ष दृष्टि से अपना व्यक्तित्ववादी तर्क प्रस्तुत किया था। आरंभ में यूरोप की धार्मिक एकता का विघटन, प्रादेशिक राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना, जैसे इंग्लैंड में हेनरी अष्टम और एलिजाबेथ के शासनकाल में के बाद प्रारंभ हुआ, परंतु धार्मिक समूहों या संप्रदायों की बहुलता पर अंकुश लगा पाना असंभव था। जैसे प्रोटेस्टेंट देशों में कैथोलिक अल्पसंख्यक और कैथोलिक देशों में प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यक, बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्टेंट समूह, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने ढंग से बाइबल की व्याख्या करने के अधिकार का दावा कर रहा था, अंततः उसे इसने मध्यकालीन चर्च राज्य संघ को भंग करके सहिष्णुता लाने में और कालांतर में संप्रदायों की बहुलता ने धर्मनिरपेक्षता एवं धर्म के प्रति अविश्वास को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इस प्रकार धर्म सुधार से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दूरगामी मौलिक परिवर्तन आए। हालांकि इन परिवर्तनों को लाना उसका पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं था, इन परिवर्तनों ने अंततः पश्चिमी यूरोप के बुर्जुआ समाज को पूर्ण परिवर्तन की ओर ले जाने में एक बहुत निर्णायक भूमिका निभाई।